पढ़ो भाई। بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک عورت تھی, یعنی انصار کے گروہ میں, جماعت انصار میں ایک عورت تھی, نام کی صراحت نہیں ہے. وہ اپنے کھیت کے اندر پانی کے نالی کے کنارے کے اوپر چکندر کی کھیتی کیا کرتی تھی. عربی اس کا معنی آتا ہے چھوٹی نہر, دوسرا معنی آتا ہے نہر کا کنارہ. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے اور گڑھے, اس کے کنارے کو بھی عربی آ کہتے ہیں. کھیت کے اندر بیچ بیچ میں پانی کی نالیاں بنائی جاتی ہے پانی گزرنے کے لیے. وہ جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہے پانی کی, اس کے کنارے کنارے پر کچھ الگ کھیتی کی جاتی ہے. مثلاً یہ کہ پورے کھیت کے اندر کریلا لگا ہوا ہے, تو یہ جو پانی کی نالی ہے, اس کے کنارے کنارے ٹماٹر, مرچی, پودینہ, ہرا دھنیا, ایسی چیزیں لگا دی جاتی ہیں. اب چونکہ وہ پانی کا گزرگاہ ہے, اسی لیے وہ نالی کے کنارے کے اوپر جو بھی سبزی لگاؤ بہترین ہوتی ہے, شاندار ہوا کرتی ہے. تو یہ انصاری عورت کیا کرتی تھی, اپنے کھیت میں پانی کی نالی کے کنارے کے اوپر چکندر لگاتی تھی. چکندر ایسے بھی اچھی چیز ہے کھانے میں, کھانا چاہیے. فکانت, اس بڑی بی خاتون کا معمول یہ تھا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو چکندر کی جڑوں کو ایک ہانڈی میں ڈالتی تھی, تنزیع اکھاڑ کے لاتی تھی, توڑ کے لاتی تھی. چکندر کی جڑوں کو توڑ کر کے اکھیڑ کر کے لاتی تھی اور ہانڈی میں رکھتی تھی. پھر اس کے اوپر ایک مٹھی پیسا ہوا جو ڈال دیتی تھی, قبضہ مٹھی بھر پیسا ہوا جو ڈال دیتی تھی. لہذا وہ چکندر کی جڑیں شوربہ بن جاتی تھی, ایک طرح کا کھچڑا بناتی تھی عورت, انصاری عورت گوشت کے بجائے چکندر استعمال کرتی تھی. اور چکندر بھی بڑی مقوی سبزی ہے. اب کھچڑے حلیم کی ترتیب کیا ہوتی ہے, جو یا گیہوں یا جواری وغیرہ کو گوشت کے ساتھ ملا کر کے شوربے جیسا بنا دیتے ہیں, वो हो गया खिचड़ा, हलीम, खुरदी, वो बन गई। लेकिन ये तरीका क्या हुआ कि गोश्त के बजाय उसने डाला चुकंदर, और वो हर जुमा को ताज़ी ताज़ी तोड़ के लावे और हांडी में डाले और ऊपर से पीसा हुआ जौ डाल देवे और फिर उसका शानदार शोरबा खिचड़े जैसा, हलीम जैसा बना डाले। वकुन्ना। और हम सहाबा जुमा की नमाज के बाद फारिग होते निकलते, फनुसल्लिमु अलैहा, उस अंसारी औरत के घर जाके सलाम अलैकुम खाला जान पहुंच जाते हम लोग। फतुकर्रिबु जालिका ताम इलैना, वो अंसारी बड़ी भी वो पका हुआ खाना खिचड़ा हमारे सामने पेश कर देती थी। फनल अको हो, हम खाते थे उसको मज़े से। वकुन्ना न तमन्ना यौमल जुमुआ तिली तामिहा जालिका, और उस खाने के लिए हम जुमा की आमद का इंतज़ार करते थे, मुतमन्नी रहते थे कब जुमा आवे ने कब वो बड़ी बी का चुकंदर का हम खिचड़ा खावे, उसके लिए हम जुमा के इंतज़ार में रहा करते थे। बस यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अली इस रिवायत को क्यों लाए कि जुमा पढ़ के उस बड़ी बी के यहाँ जाते थे और फिर वो हमको खिचड़ा खिलाती थी जुमा के बाद खाने को, साबित करने के लिए ये रिवायत लाए। तो मालूम हुआ कि जुमा के दिन खाना जुमा की नमाज के बाद होना ये मुस्तहब है। सहाबा का तर्ज़ अमल यही था और यही अच्छी चीज़ है, इसलिए कि आप जुमा से पहले खाना खाओगे तो कैलूला खुतबे में हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि जुमा से पहले खाना मत खाओ, जुमा के बाद खाना खाओ। दूसरी एक अहम बात यह है कि जुमा के लिए आपको जल्दी जाना है मस्जिद, और जिस कदर जल्दी जाओगे इस कदर सवाब ज़्यादा मिलेगा। अब इतना जल्दी तो दोपहर का खाना पकेगा नहीं, इसलिए बगैर खाए हुए चले गए और जुमा की नमाज के बाद खाना, जुमा की नमाज के बाद कैलूला, दोनों चीज़ हो जावे, इसका इस्तेहबाब साबित करने के लिए ये रिवायत इमाम बुखारी लाए। एक तीसरी बात, इशारा इस रिवायत से ये भी निकलता है कि जुमा हफ्ते की ईद है, इसीलिए उस दिन कुछ अलग थलग अंदाज का खाना हो तो अच्छा है। देखो ये अंसारी औरत जुमा को चुकंदर का खिचड़ा पकाती थी, सहाबा पूरे हफ्ते भर जुमा के मुतमन्नी रहते थे कि कब जुमा आवे और उनके यहाँ का खिचड़ा हमें नसीब हो गए। तो ये भी जुमा की हफ्ते की एक ईद के कामों में का एक छोटा सा काम हो गया, कुछ अलग थलग वैरायटी बन जावे जुमा के दिन पूरे हफ्ते जो खाते हैं उसके अलावा। चौथी चीज़, इस तरह की गिजाएं बड़ी मुकव्वी होती है, यानी मसलन चुकंदर है, शलजम गोश्त, उसको पीसे हुए जौ या भड़ेले गेहूं, भड़ेली ज्वार, उसके साथ उसको पका करके हलीम खिचड़े जैसा बनाया जावे तो ये खाने के एतबार से भी बड़ा लजीज, सरी उल हजम, जल्दी हजम होने वाला और खून अच्छा बनाने के लिए मुफीद करीन ये गिजाएं। जी इस रिवायत में सराहत आई मा कुन्ना नकीलु वला नतगत्ता इल्ला बादल जुमुआती, हम कैलूला नहीं करते थे, दोपहर का सुबह का खाना नहीं खाते थे मगर जुमा ही के बाद, यानी जुमा के दिन दोपहर का खाना जुमा के बाद ही हुआ करता था, कैलूला भी जुमा के बाद ही हुआ करता था। यही मामूल हजरत सहाबा के अंदर आम था। जी, अब ये मुस्तकिल बाब लाए। साबिका बाब का मकसद था खाना जुमा के बाद, दूसरे जरूरी कामकाज जुमा के बाद। ये बाब है सिर्फ कैलूला के बारे में। कैलूला भी जुमा के दिन जुमा के बाद ही होना चाहिए। जी, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो को मैंने इरशाद फरमाते हुए सुना। ये हुमैद कहते हैं कि मैंने हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो को इरशाद फरमाते हुए सुना कि हम जुमा के दिन जल्दी से मस्जिद की तरफ चले जाते थे और जुमा के बाद कैलूला करते थे। तो जल्दी चले गए मस्जिद, फिर नमाज वगैरह से फारिग होकर आए, फिर खाना, फिर कैलूला। ये हमारी तरतीब हुआ करती थी। जी, सहल रदी अल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमा की नमाज पढ़ते थे, फिर हमारा कैलूला हुआ करता था। ये रिवायत भी सरी है। गोया इन रिवायत की रोशनी में ये बात निकली कि जुमा के दिन जल्दी मस्जिद चले जाओ, इबादत में मशगूल हो जाओ, जुमा से फारिग होने के बाद खाना खाओ और उसके बाद कैलूला करो। ये तरतीब अपनानी चाहिए ताकि इबादत में भी चुस्ती रहे, सुस्ती ना हो जावे। जी।